दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, हो ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह, हो दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है।
ओम शांति। विशेष शाम के सेशन में आज हमारे बीच राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई साहब पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। भाई साहब को तो हम सीजन में बाबा के दिन देखते ही हैं और सुनते भी हैं। आज भट्टी के इस सुंदर माहौल में भाई साहब को हम सुनेंगे। विषय है बाबा की छत्र छाया में सर्व संबंधों की अनुभूति। सूरज भाई 1964 में बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। साकार मात पिता की पालना से और प्रेरणा से 1968 में मधुबन बाबा के बेहद घर में आपने अपनी जीवन ईश्वर सेवा में समर्पित की। भोलेनाथ का भंडारा आप उसके निमित्त हैं, सेवा पर हैं और साथ ही साथ ज्ञान रत्नों का भी, बाबा के ज्ञान रत्नों का भी और त्रिव्य पुरुषार्थ और स्व उन्नति का भी भाई बहनों को कैसे करें, बाबा के साथ कैसे योग लगाए, बाबा के ज्ञान की मन धारणाएं कैसे पक्की हो, उसके ऊपर भी भाई साहब का बहुत बहुत प्रयास रहा है। हर एक बाबा के स्वमान और स्वस्थिति जीवन में प्रयोग ला करके करके सफलता कैसे प्राप्त हो, उसके बारे में भाई साहब बहुत ही अच्छी विधि हमें बताते हैं। आज समय कम है तो भी हमें संपूर्ण रीति से सेटिस्फाइड करेंगे, इसी आशा के साथ भाई साहब को हम सभी सुनेंगे। विशेष पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी समाधान के प्रोग्राम चलते हैं, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स समस्या का समाधान हमें भी मिलता है, आप लोग भी सुनते ही होंगे। तो आइए अभी हम सभी सुनेंगे भाई साहब को। ओम शांति।
समय कम तो नहीं है, बहुत है। समय के अनुसार क्या डिमांड है समय की, किधर जा रहा है समय, आपको क्या लगता है अहमदाबाद में रहते हुए किधर जा रहा है, है विनाश की ओर? नहीं, विनाश की ओर बहन जी कहती है, नहीं जा रहा है। किधर जा रहा है? समय था तेजी से हर बात में अति होती जा रही है, विनाश की ओर। आंतरिक विनाश चालू भी है और हमें बाबा की छत्र छाया भी प्राप्त है, है। गुजरात का चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन आपको मदद कर रही हो, कैसे चलेंगे आप बताओ, हैं? जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो वो कैसे रहे जीवन में, बहुत निश्चिंत, ज्ञान को यूज करते हुए। हमें स्वयं को निश्चिंत बनाना है और इस बात को समझते हुए कि संगम युग पर सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा है। समझ रहे हैं ना? बहुत ब्राह्मण नहीं समझते इस बात को। साथ मिल रहा है, इस समय वो हमारे लिए है। जान लें आप अच्छी तरह, हमें हर तरह से मदद देने के लिए तैयार रहता है। हम केवल उससे कनेक्शन जोड़ें और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें, वो हमारे साथ है। सिर के ऊपर छत्र छाया है। इसी हॉल में शुरू शुरू में बहुत मुरलियां चली, छत्र छाया। आज की मुरली में भी था, याद है ना? दूहे गुलाब, सुगंधित फूल जो सदा छत्र छाया में रहते हैं। तो ये बात विशेष रूप से रियलाइज करने की है। बाबा का एक महावाक्य मैं बहुत याद दिलाता हूं, मैंने बहुत याद रखा है और बड़ा यूजफुल है, आप भी इसका चमत्कार देखना। समस्या आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है। यहां दुनिया में अलग बात है, आपको समस्या आ जाए फटाफट पहला फोन किसे जाएगा बताओ? जो अपना बहुत प्रिय होगा, जो बहुत मदद करता होगा, जिसने बहुत बार मदद की होगी, पहले उससे कॉन्टेक्ट होगा ना। हम ऐसा कर दें अपने को कि समस्याएं आने पर, बातें आने पर हम इतने ना उलझ जाएं कि ये भूल जाएं पहला फोन किसे करना है। बस इतना याद करेंगे, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा और बोलो? इससे पहले, इससे भी पहले वो स्वयं हमारे साथ आ जाएगा, फिर शक्तियां भी आ जाएंगी, विजय भी हो जाएगी। फिर कह रहा हूं, समझ लें इस बात को। और ये बात समझ में आएगी कहने सुनने से नहीं, अनुभव करने से। जब भी आप कहीं उलझ जाएं, केवल ये याद करके देखना, बाबा मेरे साथ है। और अच्छा अनुभव हो तो बाबा का आह्वान कर लेना, आ जाओ। फील करना आ गए दोनों, और इसका चमत्कार देखना। और इसकी अच्छी आदत डाल लेनी चाहिए, अच्छी आदत पड़ेगी। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं अभी का, बड़ा रहस्य भरा छोटा सा अनुभव। हम बिहार में भट्टी के लिए गए, पंजाब से हमने एक भाई को बुलाया था, बहुत पढ़ा लिखा है। एक अनुभव सुनाया उसने, एक दोस्त से मिलने में गया, मैंने उससे हाथ मिलाया, उसके पास एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा जरा फिर से हाथ करना आगे। मैंने किया, कहा तुम्हारा हाथ देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ तो शिव रहते हैं। पीछे उसने बताया कि वो ज्योतिषी है, मैंने दूर से देख लिया उसका हाथ। तो मैंने उससे पूछा, तुम बहुत याद करते हो क्या कि बाबा मेरे साथ है? कहा मेरी ये बहुत प्रैक्टिस है। तो हाथों की रेखाओं पर आ गया ना। हम जो कुछ बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमें वो केवल प्रैक्टिस लगेंगी, लेकिन वो हमारा जीवन बन जाएगा, वही चीज हमारे जीवन में समा जाएगी। तो सर्व संबंधों की बात तो बहुत बड़ी है, और जब इस पे चर्चा होती है तो कईयों को ये समझ में नहीं आता ये इतने सारे संबंध कैसे जोड़े। मैं एक हंसी का अनुभव सुना दूं। संबंध जोड़ने के साथ और क्या करना होता है, तो एक माताओं की भट्टी थी, 800 माताएं थी। संबंधों पे चर्चा हुई तो हुआ कि हम सभी बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं। बच्चा हमने उस पे चर्चा की, सबने हाथ उठाए दो दो तीन तीन बार, आज से बाबा हमारा बच्चा। यहां भी माताएं तैयार हैं इसके लिए, आगे भी सोच लेना। अगले दिन फिर आए सब क्लास में, मैंने फिर हाथ उठवाया, बाबा किस किस का बच्चा है, सबने फिर हाथ उठाया। मैंने पूछा, अच्छा एक प्रश्न है आप सभी से, ये बताओ रात को बाबा को किस किस ने भोजन खिलाया था। अब माताएं एक दूसरे को देखने लगी, कहा ये भी करना था क्या। मैंने उन्हें पूछा, क्या माँ को ये बताना पड़ता है कि बच्चे को भोजन भी खिलाना है, बताना पड़ता है माताओं को या अपने से पहले उसे खिलाते हैं। तो संबंध जोड़ने के साथ उसको निभाना, उस रूप में उसे स्वीकार करना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। और मोटी बात ये कि यहां के संबंधों से बुद्धि निकले तब एक में ठीक से जुड़े, और यहां के संबंधों से बुद्धि निकालना सहज काम नहीं है, यह सहज है। अब भाइयों से पूछता हूं, सहज है या नहीं है, कहने के लिए सच सच बताओ, सहज है सहज नहीं है। मैं ऐसे ही झूठ मूठ नहीं कहता, सब सहज है, बिल्कुल सहज योग, सब योगी हो, कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। क्योंकि संबंधों में जो मेरापन होता है उसके प्रति मनुष्य जिम्मेदारी निभाता है, उसकी पालना करता है, तो गहराई से जुड़ जाता है। उसको हटाना सहज काम नहीं है। उसको हटाने की विधि है आज की मुरली। पहुंचो सवेरे, क्या थे, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भावना, आत्मिक हो जाए सब कुछ, रूहानी हो जाए सब कुछ, ये मेरे बच्चे नहीं, सब आत्माएं हैं। बच्चे तो शरीर है ना, आत्माएं हैं सब, ये लंबी प्रैक्टिस हो जाए। मुझे एक बात और सबको कहनी है, टॉपिक के साथ मैं और कुछ कुछ भी आपके ध्यान में दिलाऊंगा। कल शाम को एक फोन किसी ने किया, हमारे साथ रहते हैं भाई, उनके पास आते हैं, कोई इम्पोर्टेंट होता है वो मुझे देते हैं। कहे माता 5-7 दिन से फोन कर रही लगातार कि मेरी बात करा दो। सुने अब क्या था फोन उसका। माता कहती है, छोटी आयु की, मेरे को एक ही बच्ची है 5 साल की, मैंने एक फिल्म देख ली थी कहीं कि किसी के बच्चे ने जब जन्म लिया तो संबंधियों ने एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया। हो जाता है ना कहीं ना ऐसा, आजकल हॉस्पिटलों में बहुत होने लगा। तो कहा मेरे मन में डर बैठ गया है कि मेरी लड़की को किसी ने एक्सचेंज तो नहीं कर दिया, बदलना, एक्सचेंज माना बदल दिया। तो कहा आज वो स्कूल गई थी, उसका छूट गया, वो जो रिक्शाओं में लाते हैं, पैदल आ रही थी, रास्ता भूल गई, उसका बैज लगा हुआ था, ये उस पर कार्ड फोन नंबर लिखा होता है, किसी ने फोन किया उसको ले आए, और उसको लाते ही मुझे तेज धड़कन हो गई, आज तो लगता है मेरी लड़की एक्सचेंज हो गई है, किसी ने उसको रख लिया, अपनी भेज दी है। तो मैंने कहा तुम अपनी लड़की का चेहरा नहीं जानती क्या? कहा जानती हूँ। मैं कहा दो चार फोटो निकाल के रख लो, मिला लेना। कहा है तो वही। और ये इतनी परेशान, अब बात मत पूछो, आप समझ नहीं सकते कितनी परेशान, पागल कि मेरी लड़की एक्सचेंज हो गई है, पर है तो वही। ये जो निगेटिव सोचने का संस्कार है, ये संसार में बढ़ता जा रहा है, और जिस दिन विनाश प्रारंभ होगा ये विकराल रूप ले लेगा। विनाश कोई एक रात में नहीं होता, जो बाबा से पूछते रहते थे ना हम सब, बाबा विनाश की डेट बताओ, और बाबा कभी नहीं बताता था, क्योंकि विनाश एक दिन में नहीं होता, कम से कम 10-12 साल में होगा। घटनाएं होती जाएंगी बुरी बुरी, उससे कोई भयभीत होगा, कोई पागल हो जाएंगे, किसी को वही वही दिखाई देगा जो देख लिया है, और रोज के सीन हुआ करेंगे। इसलिए बाबा कहते विनाश को देखना मासी का घर नहीं, बहुत बड़ा रोल है वो, परिवर्तन है। परिवर्तन शब्द बहुत छोटा सा, किसको सुन के किसी को ऐसा नहीं लगता कि खतरनाक परिवर्तन है, पर वो अति खतरनाक परिवर्तन है। संडे की मुरली आपने सुन ली होगी एक वीक पहले, ये प्रकृति के पांचों तत्व तुम्हारी मदद करेंगे। सागर क्या करेगा? नहीं, सफाई नहीं, सागर के नीचे बहुत सारा हीरे मोती माल है, वो उछल के आएगा, सब भारत की भूमि छोड़ के पीछे हटेगा। धरती क्या करेगी? गहरी बातें हैं ये, इंडिया फिलोसॉफी की गुह्यतम बातें हैं। धरती में भूकंप होंगे, और धरती के अंदर जो बहुत संपदा है, सतयुग की सारी संपदा इधर ही तो है, कहीं गई थोड़ा ही, सोना नष्ट थोड़ा ही होता है, वो सब ऊपर आ जाएगा। बरसात करेगी सफाई, हवा बरसात, इन सब को देखने के लिए ये बहुत आवश्यक होगा कि हम बाबा को अपनी छत्र छाया बना लें। बनाएंगे संबंधों को जोड़ने के लिए बाबा से, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब देह के नातों से बुद्धि तोड़ने की बात होती है तो सभी के चेहरों पर उदासी आ जाती है। मैं देख रहा हूं माताओं के चेहरे, उदासी आ गई, कैसे छूटेगा ये मोह, बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है। आप कुछ न छोड़ो, अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि, इससे स्वतः ही हम डिटैच भी होते जाएंगे और बाबा की ओर हमारा आकर्षण भी बढ़ता जाएगा। जितना हम देह से न्यारे होंगे, बाबा की ओर खिंचाव बढ़ने लगेगा, बुद्धि एकाग्र होने लगेगी, मन शांत होने लगेगा। मन को शांत करने की बाबा ने ये सबसे सुंदर विधि बताई है, बिल्कुल देह से न्यारा फील करो। ये एक मिनट का न्यारापन बहुत जबरदस्त अनुभव कराने वाला है। तो मैं इसके लिए आपको एक और नई सहज सी विधि बता देता हूं, आज योग भी है उसमें भी कर लेना, और फिर बाबा से और संबंध तो आपको पता है, बाप टीचर सदगुरु, तीन मुख्य, खुदा दोस्त चौथा, ये संबंध हमें उससे पक्के करने हैं। प्रियतम भी है वो हमारा, लेकिन प्रियतम का अर्थ होता है केवल उससे ही हमारा प्यार हो, इसलिए वो बहुत सूक्ष्म बात है, उसको छोड़ देंगे। वो हमारा गुड फ्रेंड है, खुदा दोस्त है, और बाप टीचर सदगुरु है। तो विधि है शरीरी होने की, सभी कर सकते हैं बहुत आराम से। अपनी 84 जन्मों की एक माला बनाओ, 83 शरीर हो गए, 84 जन्म, हमारे ये सभी शरीर खड़े हैं एक माला के रूप में, इसको देखो जरा। और मैं आत्मा इस शरीर से निकल पहले शरीर में, उससे निकल दूसरे में, उससे निकल तीसरे में, और ऐसे 84 पार करते हुए यहां। ये आप कई राउंड लगा सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव होगा। करेंगे प्रैक्टिस, अभी रेड लाइट कर दो भाई। बिल्कुल देह से न्यारेपन की फीलिंग हो जाए, आज की मुरली से ही मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। बनाए अपनी 84 जन्मों की माला, अपने राइट साइड से देखें देव स्वरूप, अनेक 20-21 देव स्वरूप खड़े हैं हमारे। फिर द्वापर के अनेक जन्म, कलयुग के मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बहुत तेजस्वी चमकती हुई मणि, इस तह से निकली यात्रा पर चली, पहले शरीर में प्रवेश कर लिया, सिर पर डबल ताज है, बहुत दिव्य शरीर, संपूर्ण पावन, इसको छोड़ दूसरे शरीर में। अब आत्मा को यात्रा कराएं तीसरे में, चौथे में, शरीरों को पार करती हुई चैतन्य मणि आगे बढ़ रही है। द्वापर में मनुष्य शरीरों में प्रवेश करते, उन्हें छोड़ते, आ रही है वापिस, आ गई फिर से अपनी भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। बहुत अच्छा लगेगा इससे, हमारे मन को हमें काम देना होता है। योग अभ्यास में सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने मन को कुछ ड्रिल दे देते हैं। ड्रिल सुना है ना शब्द बार बार। अगर ऐसे ही बिना कुछ संकल्प दिए योग करेंगे तो संकल्प बहुत जल्दी स्लिप हो जाएगा, इसलिए सुंदर संकल्प क्रिएट करते हुए योग करेंगे। बाबा से हमारे पहले तीन नाते, बाप, टीचर, सदगुरु प्रसिद्ध हैं और मुख्य यही हैं। बाप रोज सुनते हैं हम, इसलिए हमारे लिए कॉमन हो गया है, लेकिन वो मेरा है, फील करें, मेरा पिता, मेरा, तो उसका सब कुछ मेरा। और जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ध्यान देते हैं बहुत, वैसे ही वो भी करता है। सुन रहे हैं सभी? इसलिए इस युद्ध के मैदान में अकेले नहीं लड़ो, बहुत बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति हमारी है, वो हमारा माता पिता है। और इससे भी आगे बहुत सुंदर बात है, आज के वरदान में भी थी वो, उस पर हमारा अधिकार भी है, उसकी शक्तियों पर भी अधिकार है, उसके वरदानों पर भी अधिकार है, उसके प्यार पर भी अधिकार है, और वो अपना सब कुछ हमें देने आया है। इसको अपने चिंतन में लाना है, केवल बाबा बाबा नहीं, वो मेरा है, गुड फीलिंग होनी चाहिए। जिसे हम भगवान कहते आए, वो अब मेरा है। ये अपनापन ये भी कहने तक न हो जाए, जैसे यहाँ आप सबके नाते जुड़े हुए हैं। बच्चे माँ को देखेंगे तो दौड़े चले आते हैं ना, बाबा के प्रति ऐसा ही अपनापन हो जाए तो संपूर्ण अधिकार मिल जाएगा। तो नाता जोड़ना है उससे, इसका अर्थ ये नहीं कि लौकिक बाप को छोड़ देना है, लेकिन उससे गहरा नाता हो जाए। टीचर पढ़ाने आ गया है, बहुत बड़ी पढ़ाई है, पता है सभी को बहुत बड़ी पढ़ाई है? बहुतों को नहीं पता, क्योंकि सहज ज्ञान मिल गया है। मैं आत्मा हूं, एक ही लाइन में बता दिया ना बाबा ने, मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं। और इसी को शास्त्रों में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, फिर भी पता नहीं चला मैं कौन हूं। और सबसे गहरी बात और हमारे लिए सबसे छोटी सी बात, कहां से आए हम सब, ये किसी विद्वान को नहीं पता, ये शंकराचार्यों को नहीं पता, ये महामंडलेश्वरों को नहीं पता। हमारे लिए छोटी सी बात, बच्चों को भी सिखा देते हैं आप। तो ज्ञान बहुत बड़ा मिला है, धाना का ज्ञान छोटा ज्ञान नहीं है, रहस्य है सारी सृष्टि के। कल परसों बाबा मुरली में कह रहे थे, कल शायद, ये झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है तुम जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानता, शास्त्रों में टच की हुई है बातें बस, जिसको बाबा कहते आटे में नमक जैसा है। बहुत गहरा ज्ञान मिला है, टीचर से नाता माना, टीचर का रिगार्ड, टीचर की पढ़ाई का रिगार्ड। और मैं जो एक बात सबको कहता हूं, इस पढ़ाई को, इस ज्ञान को अपना विवेक बना दो। ये बहुत गहरी बात है, जिनकी समझ में आ जाए, इस नॉलेज को अपनी विजडम बना दो। नॉलेज सिंपल मिल गई है, भगवान को जानना तो अति कठिन था। महात्मा बुद्ध से लोग पूछते थे, भगवान के बारे में कुछ बताओ, चुप, कुछ नहीं बोला, है भी या नहीं ये भी नहीं बोला। तो कितना गहरा और बड़ा ज्ञान, इसका अगर हम चिंतन करेंगे तो वो चिंतन सार बनकर हमारी बुद्धि में समा जाएगा, उसे कहते हैं विजडम, विवेक, सद्विवेक। ये सब तो सुना है ना सबने, इसको सद्विवेक प्राप्त हो। ज्ञान का अगर चिंतन नहीं करेंगे तो ज्ञान सार रूप में समाएगा नहीं। सुन लिया आपने अभी अभी मुरली में, पिछले संडे, भोजन हजम हो जाता है तो क्या बन जाता है, खून। ज्ञान मनन करेंगे तो शक्ति बन जाएगा। इसको ज्ञान का सार, विवेक, विजडम कहते हैं। इसकी बहुत जरूरत है, ताकि ज्ञान हमें याद भी रहे, समय पे याद भी आए, और वो हमारी बुद्धि में इतना समा जाए कि जन्म जन्म हमारे साथ चले। ज्ञान भूल जाएगा विनाश के साथ, लेकिन उसका विवेक सदा हमारे साथ रहेगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ब्राह्मणों के लिए जो भी करना चाहे बुद्धि की सफाई करें। अगर सब कुछ प्राप्त करना है बाबा से, वो वरदान देने आया है, शक्तियां देने आया है, प्योरिटी की पावर भरने आया है हमें, अगर ये सब चीज चाहिए जो हमारे सुखों का आधार है, जो पूरे कल्प का आधार है, तो बुद्धि को साफ कर दो। क्या क्या माल भरा है बुद्धि में बता दो तो सबको ख्याल में आ जाए। हैं? बोलो और बोलो, सबको पता है, सबने भरा है। देखो अपने अंदर, आंख बंद करके झांको अंदर, क्या क्या माल भरा है। उसे खाली करेंगे तो ईश्वरीय खजाने आएंगे ना, नहीं तो जगह ही नहीं है। कई माताएं मुझे कहती हैं, भाई जी बाबा की मुरली याद नहीं रहती। मैं कहता हूं बाकी सब तो याद रहता होगा, 10 साल का भी वो सब याद रहता है, मुरली साथ साथ आउट। क्यों? इधर जगह ही नहीं बची है, कुछ डिलीट करो तो जगह बचे। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, परचिंतन, परदर्शन और सारे विकार, ये गंदगी भरी है बुद्धि में। जो इसकी जितनी सफाई करे, ये बुद्धि उसके लिए उतनी ही सुखदायी बने। तो हमें नशा रही, हमारा नाता हो जाए उससे, वो हमारा सुप्रीम टीचर है। और भी बहुत सुंदर नाता है परम सद्गुरु का, गुरु है वो हमारा। उसने हमें गति और सदगति की गारंटी दे दी है, मेरे पास आ गए मुक्ति और जीवन मुक्ति पर तुम्हारा अधिकार हो गया। ऐसा गुरु संसार में न कोई हुआ न होगा। आजकल के गुरु तो क्या बन गए, क्या बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट। बहुत बड़े उद्योगपति हैं कई गुरु आजकल, हैं या नहीं? तो जो साधनाओं का मार्ग था वो पीछे छूट गया, अब उनके भाग्य में पैसा था, गए थे सब कुछ छोड़ के, पाना कुछ और चाहिए था, पाने लगे कुछ और, इसलिए धर्म का बल समाप्त हो गया और छीन पड़ गया है। तो परम सद्गुरु मिला है हमें, उसने हमारे सिर पर हाथ रखकर वरदान दिए हैं, शक्तियां दी हैं, हमें वो लेनी है। गुरुओं का भी हाथ रखाने जाती है ना, बहुत माताएं गई होंगी, बच्चों के सिर पे हाथ रख दो, हमारे सिर पे हाथ रख दो, मंत्र दे दो, गुरु भी कहेंगे जब कोई मुसीबत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। एक गुरु की शिष्य आई हुई थी नीचे, पंजाब का शिविर था ना, तो मेरे पास मिलने आए, कहा हमने गुरु किया हुआ है उसका क्या करें। मैंने उसको इतना ही कहा, गुरु किया अच्छा किया, आपको कुछ तो अच्छा ही मिली जीवन में, लेकिन गुरुओं ने गड़बड़ी ये की कि अपने से जोड़ा ऊपर से नहीं। अब उससे तो तुम जुड़ी हुई हो, ऊपर भी जुड़ जाओ तो कल्याण हो जाएगा। परम सद्गुरु, हमें नशा हो जाए, हमारा सद्गुरु कौन है, किसका हाथ पकड़ा है हमने, हमारी नैया का खिवैया कौन बना है, इसी रूप में वो हमारी छत्र छाया भी है। खुदा दोस्त, अब ये बहुत प्रैक्टिकल नाता रहेगा, उसको अपना सच्चा दोस्त बना लें। ये चीजें कहने से काम नहीं चलेगा, नाता जोड़ें, उसको निभाएं। वो मेरा दोस्त है, तो हमें अपने दोस्त के लिए कुछ करना है तो दोस्त भी हमारे लिए सब कुछ करेगा। संगम युग पर ये बहुत बड़ी चीज हो रही है, हम थोड़ा सा करते हैं और बाबा करोड़ों गुना देता है। मैं इस पे सोचा करता हूं कि हम क्या कर रहे हैं बाबा के लिए, कुछ भी तो नहीं, और दे क्या देता है वो, जन्म जन्म के लिए अथाह सुख संपदा, कमाना ही नहीं पड़ेगा। सब जानते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए आप सब कितनी मेहनत करते आए भाई लोग, नौकरियों में आपके बच्चे एक अच्छी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जो बच्चे सिंसियर हैं, जिनको बहुत रस है, लगे रहते हैं 2-4 साल, तो हम राजाई पाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हमें जो प्राप्ति होने वाली है उसकी वैल्यू हमें है, या हम अपने यहीं के चक्रव्यूह में उलझ कर रह गए हैं। सबको चिंतन करना है। अनेक आत्माएं यहीं के चक्रव्यूह में उलझ के रह गई हैं, इसलिए बाबा के सहयोग का अनुभव होता ही नहीं, क्योंकि नाता नहीं जुड़ा है उससे। आप उसे फ्रेंड बना लो, फ्रेंड का आह्वान करो, फ्रेंड से बात करते रहो, फ्रेंड से पूछते रहो, बीच बीच में अपना समाचार उसे सुनाते रहो, जैसे यहां हम करते हैं। कोई बहुत अच्छी चीज हो फ्रेंड को सुनाएं, आज ये अच्छा हुआ, अच्छे से अच्छे न्यूज उसको सुनाते रहो, उसका आह्वान करते रहो, हमारे साथ आ जाओ और देखो उसके कितने सुंदर अनुभव होंगे। अब फिर से एक बार चलेंगे हम, कैसे अभ्यास करें कि बाबा हमारी छत्र छाया है। बहुत अच्छा ये अनुभव करना है सबको। जैसे मैं आपको अब संकल्प दे रहा हूं, ऐसे अपने को दिया करना। देखें परम धाम में सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब बाबा को प्यार से निमंत्रण दें, हे प्राणेश्वर खुदा दोस्त सर्वशक्तिवान, हम आपकी शिव शक्ति नीचे आपका आह्वान कर रहे हैं, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारे आह्वान पर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अब उतरते हुए देखें उन्हें, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर। नीचे में शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। ओम शांति। ठीक है, बनता है बाबा छत्र छाया, बहुत अच्छा लगेगा ये। और अगर हम ये प्रैक्टिस बहुत करेंगे तो विनाश काल में क्या होगा, जो भी हमें देखेगा उसे दिखाई देगा यहां बहुत विशाल छत्र है इनके ऊपर तो, और उसमें इतनी शक्तियां होंगी कि अगर डाकू आपके पास आएंगे तो भाग जाएंगे, कोई और लूटपाट करने वाले, कोई और कष्ट पहुंचाने वाले आपके घर में आएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस आवश्यक है, कम से कम एक बार रोज, सवेरे शाम हो जाए तो बहुत अच्छा, इसके अच्छा अनुभव कर लेना चाहिए और ये नशा होता जाए कि वो हमारा साथी है। अब बाबा को हमने अपना संबंधी बना लिया, अपना बना लिया, बच्चा बनाओ, दोस्त बनाओ, बाप टीचर सदगुरु, तो वो हमारे परिवार में शामिल हो गया ना, हो गया? किया आपने उसको अपने परिवार में शामिल? किया है भाई, लोग बताएं अब, या मैं कमाने वाला हूं ये भान रहता है, मैंने ये सब बनाया है ये आभास रहता है। अब बहुत अच्छा आप अनुभव करें, बाबा को अपने परिवार में शामिल कर लो, हेड बना दो तो सारा हेडक खत्म, सारी टेंशन वो ले लेगा। बड़ों के ऊपर जिम्मेदारी होती है ना परिवार की, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बच्चे को भोजन ही रात को नहीं खिलाया, बच्चा रोता ही रहेगा सर रात, मम्मी मम्मी करेगा, कैसी मम्मी, खा पी के सो गई, मुझे पूछा भी नहीं। बाबा को अपने परिवार में शामिल करो, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इसके लिए, रोज अपने परिवार का हेड बना दो और देखो क्या क्या होता है। इस तरह कोई एक संबंध लेकर उस एक संबंध में परफेक्शन लानी है, तो एक ही संबंध सर्व संबंधों का अनुभव करा देगा। क्योंकि ये चर्चाएं बहुत साल पहले इसी हॉल में अव्यक्त बाबा के साथ बहुत हुई, किसी ने ये प्रश्न भी किया था कि सारे कैसे जोड़ें, बड़ा मुश्किल काम है, या सवेरे बाप बनाएं, दिन में माँ बनाएं, फिर बच्चा बनाएं, फिर साजन बनाएं, क्या करें, कंफ्यूजन होता है। तो बाबा ने उत्तर दिया, एक कोई संबंध गहराई से जोड़ लो, उसमें सर्व संबंध समा जाएंगे, सार यही है वो मेरा है। गहराई से जड़े जड़े बहुत गहरी पहुंच जाएं, भगवान मेरा है, तो द्वापर से भी वो हमारी केयर करेगा। जब भक्ति में हम उसे याद करेंगे तो सुनवाई होगी, हमें ऐसा नहीं लगेगा भगवान सुनता ही नहीं, पता नहीं कहां सो गया, लगेगा सुनता है और मदद कर रहा है। तो बनाएंगे उसको अपने परिवार का हेड, पहले माताओं से बनाएंगे या हम हैं हेड, औरों को क्यों घुसने दें परिवार में, उसको परिवार में शामिल करने से तो आनंद ही आनंद है, पर उसको खिलाना पड़ेगा, उसकी संभाल भी करनी पड़ेगी, उस पर कुछ खर्च भी तो होगा ना। और ये बहुत बड़ा भाग्य हम सबको मिला है जो आज बाबा की मुरली में था, आज कल था, कल साकार मुरली में बाबा आया है, युग बदल दे, तन मन धन सब उस पर बलिहार कर दो। अब सोचो भगवान मांगता है अपना सब कुछ मुझे दे दो, जिस जो दाता है, जिसे कोई कमी नहीं, जो चुटकी बजाए तो संसार स्वर्ग बन जाए, बाबा ने बात कही है। बाबा तो संकल्प करे और एक सेकंड में कलयुग नरक में बदल जाए, ये कलयुगी नरक स्वर्ग में बदल जाएगा, परंतु बाबा ऐसा नहीं करता, वो सब कार्य हमारे द्वारा कराता है, क्योंकि हमें भी महान बनाना है, उसे उसकी संतान उस जैसी हो, उसकी संतान द्वापर युग से संसार की पालना करती रहें। हमारी मूर्तियां ही तो पालना करेंगी ना, करेगा बाबा, परमाध्यम बनाएगा हमारी मूर्तियों को, अब भी करता बाबा है और निमित्त बनाता है हमें, हम निमित्त बन जाएं। तो जितना उसे हम सहयोग देते हैं उतना ही उसके समीप पहुंचते हैं, और हम भगवान को बांध लेते हैं वो भी हमें सहयोग करता रहेगा। विनाश काल में इन चीजों के बहुत अनुभव होंगे, अभी तो वो असली विनाश का स्वरूप शुरू ही नहीं हुआ। परिवर्तन तो हम इसलिए कह देते हैं कि लोग बुरा मानते थे विनाश को, तो हमने परिवर्तन कहना शुरू कर दिया, पर परिवर्तन ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा मकान तोड़ के नया बनाना हो, तो जब तोड़ेंगे तब तो हाल खराब होगा ना, धूल उड़ेगी, गंदगी हो जाएगी, कैसा लगेगा, जहां एक अच्छा मकान था वहां ढेर बन गया रेत का। तो बाबा की बहुत सारी मदद, मुझे एक बात और कहनी है आप सबको, ये तो आप करें। संसार का हाल बिगड़ता जा रहा है, विनाश अभी जल्दी नहीं होगा, कब होगा? हम तैयार हो जाएंगे। और एक रहस्य सुन लो, बाबा के द्वारा बताया गया रहस्य है, संसार का हर व्यक्ति जब भगवान को पुकार कर कहेगा कि दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे खत्म करो, तब विनाश होगा। नहीं तो लोग भगवान को गाली नहीं देंगे, इतना अच्छा दुनिया ये तुमने क्या कर दिया, बड़े निर्दयी हो, कहेंगे या नहीं? सब महसूस करेंगे अब ये दुनिया राक्षसों की दुनिया हो गई है, रहने लायक नहीं रही, यहां रहना अति कठिन है। तो संसार मानसिक सजाओं की दौर से गुजरता जा रहा है, सबको ये पता होना चाहिए। इस संसार में मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं और ये मानसिक रोग उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं और देंगे आने वाले सालों में। 2020 तक आप देखेंगे क्या हाल होता है संसार का। इसलिए विनाश नहीं, विनाश से पहले चक्रव्यूह में फंस जाएगा संसार। बाबा के महावाक्य अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, विशेष रूप से मानसिक रोग, नींद नहीं आएगी रात को, बहुतों का हाल हो रहा है ये, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी कहते हैं, और ब्रेन की बीमारियां हैं जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो मुझे एक संकल्प है, आप सब अहमदाबाद से आए हैं ना, कितनी पॉपुलेशन है आजकल अहमदाबाद के? 65 लाख हो गई, बहुत तेजी से बढ़ी है ना, आत्माएं फटाफट ऊपर से नीचे आई हैं। 2020 तक मुझे ऐसा लगता है कि संसार के आधे लोग रात को सो नहीं पाएंगे, तब वो किसे याद करेंगे? नहीं, गुजरात वाले तो अंबाजी को याद करेंगे, भगवान तो छोड़ो, बाप नहीं मां को याद करेंगे, आओ मदद करो। तो माताएं क्या करेंगी, सो जाएंगी मजे से कि तुम जागते रहो, हम तो सोती हैं, होगा ऐसा? हम सभी उनके पूर्वज हैं, वो हमें सोने नहीं देंगे। इसलिए अहमदाबाद से कुछ ऐसे श्रेष्ठ योगी चाहिए बाबा को, सुन लो ध्यान से, हर सिटी में चाहिए, जो संकल्प शक्ति से सबको रात को सुलाकर फिर सोए। बच्चे सो नहीं रहे, माताएं क्या करती हैं? प्यार मिलता है मां के हाथ से और बच्चे को नींद आने लगती है। सोचा कभी आपने इस पे कितनी गुजिया गति है ये? मां ऐसे करेगी, बच्चे को हाथ से वाइब्रेशंस जाएंगे, प्यार की फीलिंग होगी, उसका रोना या और कुछ खत्म होके नींद आ जाएगी। हम भी सबके पूर्वज हैं, हम भी सबको एक स्थान पर बैठकर प्यार की फीलिंग देंगे, अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, संकल्प देंगे, अब शिव बाबा की याद में सो जाओ और नींद आने लगेगी। ऐसे योगियों की बाबा को जरूरत है जो संसार के काम आ सकें। एक ही मौका मिलेगा, एक पूरे कल्प में एक बार कि हम संसार के काम आ जाएं। अपनों के तो काम हर जन्म में आएंगे, संसार के काम आ जाएं तो संसार भी हमारे साथ चलेगा। अब आप सोच लो किस में इतनी ताकत है? है भाइयों में है, या बिजी हो गए बहुत काम धंधे में? कुमारों में तो होनी ही चाहिए, कुमार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने को निर्बंधन करके श्रेष्ठ योगी बना दें और अपने स्वमान को ऊंचा उठाएं। पूर्वज हैं हम, पूर्वज माना सबसे बड़े हैं, करो इसमें अपने को स्थिति, छोटी चीज नहीं है। कहने का नहीं मैं पूर्वज हूं, बहुत ऊंचा उठा दें अपने लेवल को तो हमारे द्वारा संसार की पालना होती रहेगी। ये बाबा का महावाक्य है। अगर तुम पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रहो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे द्वारा संसार की पालना होती रहेगी। ये बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं। माताएं करेंगे क्या? फुर्सत नहीं है, थोड़ा फ्री कर दो अपने को। यहां मधुवन में आकर बहुत गहन चिंतन सभी करें, सुन लें, और ये चिंतन अपने घरों में भी किया करना। संगम युग पर क्या हम वही कर रहे हैं जो करना चाहिए? क्या कर रहे हैं हम इस समय जबकि भगवान भाग्य बांटने आया है? हम क्या कर रहे हैं जबकि वो हमें अपना सब कुछ देने आया है? हम क्या कर रहे हैं? गहराई से चिंतन करें, क्या हम वही कर रहे हैं फिर से जो हमें कर लेना चाहिए? एक अच्छा चिंतन करना इस संगम युग पर अगले 5 सालों में मुझे क्या कर लेना चाहिए? हम क्यों आए हैं बाबा के पास? देखो पूरा चक्र घूम गया, अंत में भगवान मिले हैं। किसी को अभी मिले, किसी को 5 साल पहले, किसी को 10 साल पहले। हमने अपना संगम युग कैसे बिताया? पीछे नजर डालना और अब कैसे बिताना चाहते हैं, एक प्लान लेकर चलना चाहिए। नहीं तो ढीला जीवन चलता है, साधारण चलता है। कलयुग के प्रभाव में जीते हैं, समस्याओं के प्रभाव में जीते हैं, उससे विशेष अनुभव नहीं होता। छोड़ रहे हैं बहुत लोग बाबा को, माया काम कर रही है तेज। जो बाबा कहते थे निश्चय की परीक्षा होगी, शुरू है। बहुत लोग फेल हो रहे हैं, जा रहे हैं, रह भी रहे हैं तो संशय बुद्धि से रह रहे हैं कि अब जाएं कैसे, 20 साल तो हो गए इधर, जा नहीं सकते तो संशय बुद्धि से रह रहे हैं। अव्यक्त बाबा के पाठ को देखकर बहुतों में संशय हो रहा है। हर बात का हमारे पास यथार्थ उत्तर चाहिए। मैं उत्तर देता हूं, अभी वो टॉपिक नहीं है क्लास का। बाबा का कौन सा पाठ क्यों चल रहा है, क्यों फुल आवाज हो जाती है, क्या कारण है, क्यों रिपीट होती रहती हैं बातें, क्यों मुरली नहीं चला रहे हैं बाबा आजकल? मुरली नहीं चल रही आजकल, मिलने आते हैं क्योंकि बाबा को अपना पार्ट अब क्लोज करना है। ये खेल अब पूरा हो रहा है। अब तीसरा पार्ट चलेगा इस सृष्टि पर, कौन सा होगा वो? जय जयकार। जब सारी देवकुल की आत्माएं बाबा के पास आएंगी, जब संसार की हर धर्म की आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए बाबा के पास आएंगी, थी ना मुरली 3 दिन पहले, सबको बाप के आगे आकर सलाम भरना है क्योंकि बाप आया है, सबको यहां आना पड़ेगा। नेचुरल है ये, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा आकर्षण जहां आ जाए वहां सबको खींच के आना है। तो हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जो जय जयकार का भी होगा, हाहाकार का भी होगा, लेकिन उससे पहले ये 2-3 साल परीक्षाओं के भी हैं। इसलिए अपने निश्चय को संभाल कर रखना। संशय आने की मार्जिन बहुत होती है क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है और वो अपनी बुद्धि को चलाता तो अवश्य, उसको डल तो नहीं किया जा सकता। उसके मन में प्रश्न उठते हैं, ये क्यों, और उस क्यों का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। तो संसार में जो मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, मैं आप सभी को उससे बचने के लिए 2 छोटी सी बात कहता हूं, आप चिंतन करना उस पर, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा उसे स्वीकार करके अपने को हल्का करना है। अब वो खेल चलेगा इस सृष्टि पर जो कोई देखना नहीं चाहता, एक विराट विनाश लीला भी और जय जयकार का बहुत सुंदर पार्ट भी। द्वापर युग से जो भक्ति चलेगी कलयुग अंत तक, वो भी सब नोंद हो जाएगी भक्तों में। उस सबके विश्वरूप यही दिखाई देंगे, कौन अम्बा है, कौन काली है, कौन दुर्गा है, कौन शीतला है, कौन भवानी है, किसके कितने भक्त हैं, वो सब यही आ जाएंगे। इसलिए जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना, क्योंकि उसको कोई भी बदल नहीं सकेगा। अब भी आपके परिवारों में आपके साथ जो कुछ होता है उसको स्वीकार करना है और अपने मनोबल को ढीला नहीं करना है। कई लोग घबराते बहुत हैं, जरा सी बात आई बाबा मदद नहीं करता है, छोड़ो बाबा को, हमारा गुरु ही अच्छा था, बाबा तो कुछ नहीं करता, बिजनेस में घाटा हो रहा है बाबा कुछ नहीं करता, संशय की मार्जिन हो जाती है। एक लड़के की कहानी सुनो, 12वीं क्लास का एग्जाम अभी अभी जो हुए, मार्क्स आए 95.5%, लेकिन कैंसर, और लड़के में इतना मनोबल, कहता है मैं इस कैंसर को हरा के रहूंगा। ज्ञान वाला नहीं, बिना ज्ञान वाला युवक, 12वीं की कितनी छोटी आयु होती है, 17-18 साल। हम तो हैरान रह गए उसकी बात सुनकर, कितना सुंदर संकल्प है, मैं कैंसर को हरा के रहूंगा। बाबा के बच्चे अपने मनोबल को ढीला कर देते हैं, जरा सी बात आई उदास, क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये नहीं, जो कुछ हो रहा है स्वीकार करना, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम ही हैं। और दूसरी बात, चीजों का इफेक्ट न हो, कलयुग के वातावरण का इफेक्ट न हो, सब कुछ हमारे मन में ब्रेन में घुस न जाए, हल्कापन और बहुत खुश रहने का संस्कार। यद्यपि खुशी बहुत कठिन होती जा रही है संसार में, समस्याएं ऐसी बढ़ रही हैं परिवारों में कि बहुत परिवारों में खुशी का माहौल दब गया है, लेकिन हमें खुश रहने का संकल्प कर लेना है। खुश रहेंगे तो नहीं और कुछ, खुश रहेंगे तो समस्याएं भाग जाएंगी, उदास होंगे अंदर प्रवेश कर लेंगी, और खुश रहने को हमें सहज बनाना है, काम कठिन है। इसलिए एक ही चीज इसके लिए ध्यान रखनी है, दूसरों से कामनाएं नहीं, नो एक्सपेक्टेशंस, कामना रहित जीवन हो जाए, जिसपे सारी श्रीमद् भगवत गीता लिखी है, निष्काम, निष्काम हो जाओ। अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, वो आपका कर्तव्य था, किया बहुत अच्छा किया हमने, उनसे कुछ हमें रिटर्न आए इसकी कामना नहीं, क्योंकि हर आत्मा अपना, बोलो, भाग्य भी लेकर चल रही है और साथ में कर्मों का खाता भी लेकर चल रही है। जो आपके घर में जन्म लिए हैं बच्चे, आपके लिए तो बच्चे हैं, प्यारे हैं, छोटे हैं, लेकिन कर्मों का खाता भी तो उनके साथ है, उसका कोई क्या करेगा। तो हल्के रहना, खुश रहना, अब योग होगा, सभी अभ्यास करना वहां बैठकर भी, एक तो पहले अशरीरी होने की ये प्रैक्टिस, 84 जन्मों से घूम जाना, फिर बाबा के स्वरूप को देखते हुए उसकी किरणें मुझे मिल रही हैं और फिर संसार में फैल रही हैं, जो इस योग का लक्ष्य है, ये बहुत अच्छा अभ्यास करना। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत ही रहस्यमय और प्रेरणादायी बातें सूरज भाई जी ने हम सभी को बताई, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा।